तो
बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड ट्रॉमा पे, चाइल्डहुड ट्रॉमा पे, ठीक है? एंड व्हाट वील बी टॉकिंग अबाउट विल बी टोटली बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस जो हम सब इन जनरल अपने बचपन में एक्सपीरियंस करते हैं। पता है, मुझे लगता है शायद कोई भी इंसान वंदना ऐसा है ही नहीं जिसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा अपने बचपन में नहीं एक्सपीरियंस किया होगा जो उसकी पर्सनालिटी को शेप करता है। और बेसिकली हम सब जो आज बनते हैं, जो भी हमारा प्रेजेंट होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस का ही सम होता है, वट एवर वी आर। द फैक्ट इज कि हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो हमारी पैदा होने से लेके एंटिल द टाइम वी आर 7 ईयर्स ऑफ एज उसमें सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं। 90% ऑफ द ब्रेन डेवलप्स फ्रॉम द टाइम वी आर बोर्न टिल द टाइम वी आर 7 ईयर्स ऑफ एज। सो वॉट एवर वी एक्सपीरियंस इन दोज 7 ईयर्स इज एक्चुअली इम्प्रिंटेड ऑन अवर ब्रेन कहीं पे सबकॉन्शियस में। और पूरी लाइफ हम जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है, लोगों के साथ जो हमारे इंटरेक्शंस होते हैं, वो सारे उन्हीं बिहेवियर्स पे बेस्ड होते हैं, उन्हीं एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होते हैं जो हमने अपने बचपन में देखा होता है, राइट? तो हाँ,
मुझे ये लगता है कि जैसे अभी आपने कहा कि जब हम छोटे होते हैं वो छोटे होने की जो मेमोरीज है लाइफ लॉन्ग जब हम चलते हैं वो कुछ किसी का बिठाया हुआ डर,
राइट।
किसी का बिठाया हुआ ये कहना कि तू ये नहीं कर पाएगा, तुझसे ये नहीं होगा, वो आपको आगे जाने से बड़े होते तक रोकता रहता है।
एग्जैक्टली।
वो चैलेंजेस फेस करने से रोकता है, रिस्क लेने से रोकता है, क्योंकि बचपन में आपको ये सिखा दिया तुम ये नहीं कर पाओगे।
एग्जैक्टली।
तो समझ पाना एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पेरेंट, मेरी चाइल्डहुड मेमोरी सभी के पास कुछ ना कुछ है वो याद करने के लिए। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो डर लेकर चल रहे हो, कब तक चल रहे हो आपको नहीं पता, और उसकी हीलिंग उसको किस तरीके से बाहर आना है उस पर कुछ मुझे आपसे जानना है।
पता है, ये टॉपिक ही एक्चुअली मेरे दिल के इतने करीब हैं, बिकॉज आई थिंक आई हैव फेस्ड एवरीथिंग माई सेल्फ पर्सनली। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द हीलिंग पार्ट, एंड वो तो बहुत बाद की चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि पहले चाइल्डहुड ट्रॉमा किस किस तरीके का हो सकता है और होता है, और जो कि नॉर्मली लोग समझ नहीं पाते हैं, उस पर एक डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल अब्यूज से, राइट? स्पेशली इंडियन सोसाइटी में बच्चों को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता है। हमारे बच्चे हैं, हमने पैदा किए हैं, तो हम इनको मार सकते हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, इनके साथ जो उठा पटक करनी है कर सकते हैं, पढ़ाई अगर हमारे अकॉर्डिंग परसेंटेज नहीं आ रही है तो हम उनको अब्यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ बच्चे को थप्पड़ मारना इज लाइक ईटिंग अ ईटिंग फूड 3 टाइम्स अ डे। आप सुबह दोपहर शाम पीट सकते हो उसको, क्यों? क्योंकि वो आपका बच्चा है। कोई भी सोसाइटी में, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी घर में आप पे क्वेश्चन नहीं उठा सकता, क्योंकि वो आपका राइट है कि आपने बच्चा पैदा किया, आप उसको पीटोगे,
और
और
कुछ
आपको जो इच्छा है जिस बात पे पीटना चाहो पीटोगे। कोई राइट या रॉन्ग नहीं है उसके लिए। उसके लिए आप फट से सामने वाले को बोल दोगे कि तुम्हें क्या, मेरा बच्चा है, मैंने मारा, सही मारा, गलत मारा, अच्छी बात पे मारा, बुरी बात पे मारा, मेरा बच्चा है, मैंने पीटा। यू कैन बीट हिम टू एनी एक्सटेंट। हमारे यहाँ पे मतलब जो मेरी वाली जनरेशन है वो अपने माँ बाप से मतलब किसी भी चीज से, डंडा, कोई झाड़ू, कुछ भी, जो भी मिल जाता था उसको उठा के पीट दिया जाएगा, बिकॉज दैट दे थॉट दैट दिस इज देयर राइट,
प्रॉपर्टी है,
राइट? ये फिजिकल अब्यूज वाला पार्ट हो गया। सिमिलरली आप सोशल अब्यूज देखो, सोशल अब्यूज में वंदना, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल अब्यूज, हमारे यहाँ पे, अच्छा बेटा अंकल आए हैं इन्हें डांस करके दिखाओ,
कहीं सही।
हाँ बेटा अंकल आए हैं तो मैंने तुम्हें पोएम याद करवाई थी ना, जरा सुनाओ कि बताओ। और अगर बच्चे ने उस वक्त वो नहीं सुनाया या वो परफॉर्म नहीं किया, तो आप वही जो 50 लोग बैठे हुए हैं उन्हीं के सामने आप उसको डीमोरलाइज करने लग जाओगे। ऐसा ही है ये, पीछे पीछे तो बहुत वो सुनाता रहेगा, जब भी कोई आएगा तो उसके सामने इसका मुंह ही नहीं खुलता,
कॉन्फिडेंस के
ऐसा ही है। भाई इसका बहुत अच्छा है, भाई इसका बहुत अच्छा है। वो आया होता ना तो अभी आपको पूरी पोएम सुनाता। आपने वहीं पे उस बच्चे के अंदर जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था भी, आपने उसको वहीं पे मार दिया। नेक्स्ट टाइम जब आप उस बच्चे को चार लोगों के सामने बुलाओगे ना, वो उस कमरे में आने से पहले उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी
कि अब मुझसे क्या पूछेंगे,
क्या कि अब मेरे, और फिर जब मैं नहीं कर पाऊंगा तब मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा, तब मेरी कितनी बेइज्जती करी जाएगी। सोशल अब्यूज का एक और एग्जाम्पल बताओ, अरे वो गुप्ता जी का लड़का, तुम्हें पता है दिन में 9 घंटे पढ़ता है, IIT फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया उसने, लेकिन आपका खुद का बच्चा शायद सितार इतना अच्छा बजाता हो कि दुनिया में कोई नहीं बजा सकता, लेकिन आप उसको वो ट्रेनिंग नहीं दिलवाओगे। क्यों? क्योंकि गुप्ता जी के लड़के ने तो IIT क्लियर करी है, तो आपको तो सर्टिफिकेट चाहिए कि आपके बेटे ने भी IIT क्लियर करी है। उसका खुद का तो कोई वजूद ही नहीं है, वो क्या करना चाहता है, वो जिंदगी में क्या पाना चाहता है, उसका खुद का कोई वजूद नहीं है। वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसको वैसे ही चलाएंगे जैसे आपने सोचा हुआ है, आप उसको अपनी एक्सटेंशन मान के चलते हो आगे। आप ये समझ ही नहीं पाते कि वो बच्चे के साथ में जो आप कर रहे हो दैट इज एक्चुअली एन अब्यूज टू हिम।
और मैं आपको ये भी नहीं सोच पा रहा है वो बच्चा कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि पेरेंट ने ये कहा तो मुझे ये करना, उसकी डिसीजन मेकिंग वहीं स्टॉप
खत्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस डिसीजन लेने का खत्म हो जाता है वो कुछ। मतलब मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो ये तक कि 10th क्लास में सब्जेक्ट कौन से सिलेक्ट करने हैं वो भी उनके पेरेंट्स बताते हैं उनको, दे डोंट नो। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने की कैपेसिटी उनके अंदर डेवलप ही नहीं हो पाती है,
क्योंकि छोटे से यही बोला तुम कर ही नहीं पाओगे।
अब मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, फाइनेंशियल डिस्पैरिटी जो हो जाती है, फाइनेंशियल डिस्पैरिटी एक बच्चे की जिंदगी में एक इतना बड़ा अब्यूज है, इतना बड़ा ट्रॉमा है जिसको वो जीवन भर नहीं निकाल पाता। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, एक गरीब माँ बाप का बच्चा है और एक अमीर माँ बाप का बच्चा है। गरीब माँ बाप के बच्चे ने अमीर माँ बाप के बच्चे को कोई खिलौना खेलते हुए देखा, उसने जाके अपने माँ बाप से कहा कि पापा मम्मी मुझे भी वैसी कार चाहिए। द फर्स्ट स्टेटमेंट 99% ऑफ पेरेंट्स गिव इज जमीन पे रहो जमीन पे। देखा है उन्हें वो क्या हैं और हम क्या हैं, ये उनके मतलब की चीजें होती हैं। हमारे लेवल पे लोग ये बातें नहीं करते, ये खिलौनों से नहीं खेलते।
हम
उतना ही सोचो जितना कर सकते हो, ज्यादा ऊंचे ख्वाब मत देखो। राइट अप्रोच क्या है कि हाँ बेटा आप ले सकते हो, अभी नहीं ले सकते हम क्योंकि अभी हमारी उतनी चादर नहीं है, लेकिन आप अपने आप को इस काबिल बनाओ, इस लायक बनाओ कि आप आगे जाके वो सब कुछ अफोर्ड कर सको जो वो फैमिली अफोर्ड करती है। और आज हम आपको वो चीज अगर नहीं दे पाए, कोई ऐसी चीज है, तो आप ये इंश्योर करो कि आप जीवन में इतने आगे बढ़ो कि आप अपने आने वाले बच्चों को वो हर चीज दे सको। सी दोनों अप्रोचेस एकदम डिफरेंट हो गए। पहली अप्रोच ने उस बच्चे के सबकॉन्शियस में ये बिठा दिया कि वो जीवन में एक्चुअली कुछ कर ही नहीं पाएगा और उसको यही जीवन जीना है, इन्हीं अभावों में रहना है, इसी तरीके से जीवन भर कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं और उसको खाब देखने का भी कोई अधिकार है ही नहीं। वेरेस जो सेकेंड अप्रोच था उसने उसको ये बताया कि अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे सपनों की उड़ान कम थोड़ी ना हो सकती है, लेट्स ड्रीम एंड लेट्स इंश्योर कि इन ड्रीम्स को मैं 100% सक्सेसफुली रियलाइज कर सकूं और मैं वो हर चीज पा सकूं जो आज वो सामने वाले के पास है। और ये अप्रोच ही आपके माइंडसेट को बदल देता है। ग्रोथ माइंडसेट हुआ नहीं कि आपने उड़ान भरी।
बिल्कुल, जो स्कूल्स में भी होता है कि स्कूल्स में कंपैरिजन होता है, बच्चों के कॉन्फिडेंस के साथ इतना खेला जाता है।
एग्जैक्टली,
तुम लाओगे 60 तो तुम पीछे बैठो, तुम लाओगे 90 तो तुम आगे बैठो। ऐसा क्यों, 60 वाले को आगे बैठाओ ना, अगर वो 90 तक जा सकता है, exactly. वो चांस नहीं दे रहे हो.
नॉट ओनली दैट, सी वेदर अवर सोसाइटी एक्सेप्ट इट और नॉट, लेकिन फैक्ट ये है कि ये जो फाइनेंशियल डिस्पैरिटी वाली जो बात है ये भी स्कूल्स में अप्लाई होती है. वो बच्चे जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से आते हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, वो उनको स्कूल में भी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. क्या वहां पे इवन ये भी नहीं देखा जाता कि वो पढ़ाई में कितना अच्छा है या उसकी परसेंटेज क्या आ रही है या उसकी एक्टिविटीज क्या है. वो फाइनेंशियल और इन्फ्लुएंशियल डिस्पैरिटी आपको स्कूल्स में भी बड़ी आसानी से दिख जाएगी और हर बच्चा उसको महसूस करता है. इसके अलावा नॉट ओनली इन इंडियन सोसाइटी, बोलते ही हैं कि इंडियन सोसाइटी में है बट हर जगह है, हर बच्चा सेक्सुअल अब्यूज से भी गुजरता है. ये अलग बात है कि उस बच्चे को उस वक्त में ये पता ही नहीं होता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद मी, Who is doing what with me? और ज्यादातर बच्चों का ये होता है कि उन जब वो बड़े हम जब अडल्ट हो जाते हैं तो ज्यादातर बच्चे अपने 10 साल से पुरानी वाली जो मेमोरीज है ना वो याद ही नहीं रख पाते. उनके सबकॉन्शियस में तो होती हैं लेकिन कॉन्शियसली उनको याद नहीं होती हैं. मैं अगर किसी से आज पूछती हूँ कि तुम्हें जब तुम 3 साल के थे तब तुम्हें कुछ याद है या जब तुम 4 साल के थे तब का तुम्हें याद है, मैंने देखा है बच्चों को याद ही नहीं होता. लेकिन वो बच्चे और वो कुछ स्पेसिफिक बच्चे होते हैं जिनको अपने 2 साल की मेमोरीज भी होती हैं,
अच्छी होती है मेमोरीज या बुरी होती है.
अब ये अच्छी और बुरी दोनों याद रहती हैं और जिनको याद रहती हैं वो कुछ जो बच्चे हैं वो आपको ये बहुत आसानी से बता पाएंगे कि हाँ उनके साथ बचपन में ये हुआ था और उस वक्त उन्हें पता तक नहीं था कि ये क्या था. लेकिन 90% बच्चे वो भूल जाते हैं क्योंकि जो बचपन में उनके साथ हुआ होता है वो बाद में उनकी मेमोरीज ही नहीं रह जाती उनके वाली. बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें इम्प्रिंट हो जाती हैं और उन चीजों का जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी अडल्टहुड में आपको देखने को मिलता है. कैसे मिलता है वो अभी अपन बात करेंगे.
मेरा क्वेश्चन यही आने वाला था क्योंकि अगर कुछ ऐसा फेस किया है जो आपको नहीं पता, मतलब आप उसके लिए तैयार नहीं हो लेकिन आपने फेस किया और आपका आने वाला जीवन उससे अफेक्ट होने वाला है, वो क्या होगा? मतलब मुझे आप सुनना है.
मैं तुम्हें हर चीज का रियलिस्टिक कनेक्शन बताती हूँ. तो हमने पहले फिजिकल अब्यूज की बात करी. एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है बच्चों की बेडवेटिंग की. तो 90% बच्चे जो बेडवेटिंग करते हैं दे आर गोइंग थ्रू ट्रॉमा. उनके माँ बाप उन्हें मारते होंगे, वर्बल अब्यूज करते होंगे, आपस में उनके घरों में लड़ाइयां होती होंगी. वो बच्चे हमेशा सहमे हुए और डर में रहते होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि किस वक्त किस बात पे उनके पेरेंट्स या तो उनके ऊपर या आपस में झगड़ पड़ेंगे, किस बात पे उनके घर पे झगड़ा हो जाएगा. इस वजह से हमेशा जागते हुए उनका माइंड एकदम अलर्ट मोड में रहता है. दे आर ऑलवेज इन एन अलर्ट मोड. चारों तरफ उनका दिमाग रहेगा कि कहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है और क्या गड़बड़ हो जाएगी जिसकी वजह से मेरे घर में अभी क्लेश शुरू हो जाएगा. उसका परिणाम ये होता है कि जब वो बच्चे सोते हैं, अब है तो बच्चा ही ना, दिन भर उसका ब्रेन जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, वो हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में चल रहा है.